الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم. آپ پرانے ساتھی نئے ساتھی بھی شاید جانتے ہوں گے علاج حضرت جی کا بہت ہی اچھا ہو رہا ہے اور چوٹی کے ڈاکٹر جو ہیں پنڈی اسلام آباد کے اور اس ہسپتال کے ہسپتال میں بڑی کیئر ہو رہی ہے ماشاء اللہ. اور کیسے ہوا یہ سب چیزیں من جانب اللہ, یہ ہمارا ایمان ہے. بیماری اور شفا اور جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے والی وہ ذات اقدس ہے جو دیکھ رہی ہے اور جس کی نظر قلوب پر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے قلوب سے کوئی خیال اٹھتا ہے, کوئی وسوسہ آتا ہے, اس سے بھی میرا اللہ واقف ہے, چھپ نہیں سکتا. وہ چاہے عالم دین ہو, چاہے جاہل ہو, چاہے استاد ہو, چاہے طالب علم ہو, مزدور ہو یا آقا ہو, یا بادشاہ ہو یا بادشاہ کی رعایا میں سے کوئی ہو, جو کچھ اس کے دل سے اٹھ رہا ہے قلب سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رجسٹر ہو رہا ہے. عالم دین یہاں تشریف لائیں میرپور سے, ماشاء اللہ کرنل صاحب کی کاوشوں کو سلام کرنا چاہیے, اور انہوں نے یہ چیز روشناس کرائی. لیکن میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں, انہوں نے تو پڑھا ہوگا, ہم نے سنا ہے اور جو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان ہو یا حیوان ہو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, چونکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں ان میں قوت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ان کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سب پیغمبروں سے زیادہ تکلیف پہنچی, اور آخری وقت آپ پانی رکھا ہوا تھا اس میں ہاتھ رکھے ہوئے تھے. اسی طرح سے اولیاء کرام جو ہیں نا ان کو بھی دس مردوں کی قوت حاصل ہوتی ہے, واللہ عالم کتنی طاقت ہوگی, یہ تو ایک مثال بنی ہوئی ہے. انہیں بھی ان کے منصب کے مطابق جو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت اور کرم کیا ہوا ہے, جو فیض کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے تکلیف آتی ہے. اور جو تکلیف حضرت جی کو مل رہی ہے یقیناً اگر کسی عام آدمی کو ملتی تو ہائے ہائے کرتا. میں نے حضرت جی کو ہائے ہائے کرتے نہیں دیکھا, بلکہ ہمیشہ یہی فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا انعام ہے, یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے. لیکن عام آدمی جو ہے اب وہاں ملنے کی بندش ہے یا نہیں ہے, لیکن حضرت کو تکلیف ضرور ہوتی ہے. تو میں تین دفعہ یا چار دفعہ ملوں تو پانچ سیکنڈ یا دس سیکنڈ کے لیے. اسی طرح سے اور جو ساتھی تھے جن کو, تو حضرت زیادہ دیر جو بیٹھتا ہے پھر اس کو خود فرماتے ہیں, کیا میں گیا اور ہاتھ ملایا یا ہاتھ چوما یا جیسے بھی, تو پانچ سیکنڈ یا دس سیکنڈ سے نہیں. آج پشاور سے دو ساتھی آئے ہوئے تھے اور ان کو بھی جب ڈاکٹروں نے فارغ کیا حضرت جی کو تو ملے جا کے. اب علاج بہت اچھا ہو رہا ہے, اب صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. یہاں ہم نے ایک دن سب نے بیٹھ کے, وہ 20-22 آدمی تھے, تو ہم نے آیت کریمہ کا ورد کیا. تو پھر اگلے دن جو کرنا تھا غور ایمان صاحب نے حضرت شاہ صاحب سے پوچھا, انہوں نے فرمایا آپ پڑھیں, نفل بھی پڑھیں, دعائیں بھی کریں, لیکن یہ نہ ہونا کہ آنے والے یہ کہیں کہ یار یہ بھی ہمارے سلسلے کا طریقہ تھا. میں ایک عرض کر دوں کہ جو کام کسی بزرگ سے ہوتا ہے نا کوئی وقتی طور پر فائدہ پہنچانے کے لیے, یا اس کی کوئی ایک خاص وقت مقرر تھا, تو جو آنے والے مرید ہیں نا وہ اس کو اس کی سنت سمجھ کے آگے چلا دیتے, پھر یہ معاملہ جو ہے نا جو اصل کام ہے وہ رہ جاتا ہے. ہمارے بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام سے اب پوری دنیا واقف ہے اللہ کے فضل و کرم سے, ان کا یہ فیض جو ہے اب دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے सिवाय इसराइल के, वहाँ भी शायद बता दो उन यहूदियों को दिया होगा जो मौलवी हजरात यहाँ से भाग के जाते हैं। रूस और इसराइल का मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी यूरोप, अमेरिका और गल्फ स्टेट्स और मुसलमान ममालिक जितने भी हैं, हत्ता कि इंडोनेशिया में और मलेशिया में, किस किस मुल्क का नाम लिया जाए, बांग्लादेश में, और जब हज़रत तशरीफ़ ले गए इंडिया में तो 300 उलमा ने बयक वक्त आपकी बैत की, और वो आलिम जिन्होंने या तो उन्हें फजीलत मिली सहारनपुर से या देवबंद से, वो लोग ये जानते थे कि इसके बग़ैर गुजारा नहीं। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की है, यौम ला यनफ़ऊ मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। ये उनके लिए नहीं जिनमें आप तशरीफ़ लाए, बल्कि ये क़यामत तक ये पैगाम अबदी पैगाम है। और पैगाम किसका है? वो ज़ात जिसने हम सबको पैदा किया है और फिर हम सबको मारेगा, फिर हमें ज़िंदा करेगा और फिर हम उसके सामने खड़े किए जाएंगे। और फरमाते हैं कि उस दिन आपको कोई चीज़ नफ़ा नहीं देगी, ना तो माल नफ़ा देगा ना बेटे नफ़ा देंगे, क्योंकि जो मुशरिकीन मक्का थे उनको ये फ़ख्र था कि मेरे इतने बेटे हैं, मेरे पास इतना माल है। इसकी नफ़ी फरमा दी कि वो दिन जो आने वाला है और जो आके रहेगा, उससे पनाह मांगी, आऊज़ु बिल्लाह मिन ज़िकर मुकाम यौमुल क़यामा, उस दिन कोई चीज़ काम नहीं आएगी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो काम किए, शरीयत भी लाए और तरीकत भी। ये हो नहीं सकता कि पैगंबर आए, उसके सामने कोई बैठा हो, उसका सीना मुनव्वर ना हो। वो कोई जाहिली होगा जो ये कहेगा कि सीना मुनव्वर नहीं करते थे, सिर्फ ज़ाहिरी अकाम बताते थे, ऐसा हो नहीं सकता। और ये भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ नहायत वसूख के साथ, ज़ाहिरी शरीयत पर अमल करना इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई दिक्कत तलब काम है, जब तक कि इसका कलब साफ़ नहीं होता, वो गवाही ना दे, इसके कलब की सफाई नहायत ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि मुझे आपको कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देगी सिवाए ये जो चंगा दिल ले आएंगे, साफ़ सुथरा दिल लाएंगे। अब साफ़ सुथरे दिल के लिए कितनी कोशिश हो रही है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का विरद किया जाता है, मसाइल बताए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कलील लोग हैं जो ये पहचानते हैं, ये जानते हैं कि इन सब चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन असल चीज़ जो है वो कलब की सफाई है। याद रखें, हमारे कोई भी हम में से हो, उसके अमाल जो है ना, उसे पता है कि मेरे अमाल में कितना खलूस है। एक आदमी कहता है मैंने 1 करोड़ दफ़ा सुभान अल्लाह कहा है, लेकिन उसमें खलूस कितना है? और एक आदमी है जिसने 1 ही दफ़ा कहा है सुभान अल्लाह खलूस के साथ, वो उस करोड़ से कई करोड़ गुना बढ़ जाता है। ये खलूस कैसे आएगा हमारी ज़ुबान में? ये आएगा जब दिल साफ हो। आपको पता है इस वक्त बुराइयाँ अपने उरूज पर हैं, आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, लगता है कि इंसान बाहर जाए तो आँखों पे पट्टी बांध ले, या ये ऐसा इस पर अल्लाह करम करे कि इसे घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही ना पड़े मस्जिद के अलावा, लेकिन मस्जिद जाते हुए भी आपकी आंखें इतना गुनाह कर जाती हैं जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। और ये आंख जो है यही जो है गुनाहों का सबब बनती है, वो देखता है, वो इसके दिल पे असर करती है, ये फिर 1 घंटा सोचता ही रहता है। ये नमाज में खड़ा है लेकिन इसका ध्यान कहीं और है। अब कोशिश ये करनी है कि इसका दिल इतना साफ हो जाए कि इसकी आंखें अगर देख भी रही हैं तो कोई अच्छी चीज़ देखें, इसका दिल अल्लाह के साथ लगा रहे, قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، علماء پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو صادقین کے ساتھ ملتے ہیں؟ نجات اسی میں ہے کہ خوف خدا ہو اور سچوں کا ساتھ ہو. جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوتی تو نجات جو ہے نا وہ ڈاماڈول ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے ساتھ. اور پھر یہ بھی نہیں کہ کوئی آپ کو بتائے کہ فلاں سچ ہے، یہ بھی ضروری ہے. اگر بعض علماء نے، بعض مفسرین نے اس ڈھونڈنے کو فرض کہا ہے، اور آپ خود بھی اپنے فتویٰ دیں گے کہ جب اللہ نے کہا کہ بھائی چنگے دل کے بغیر کام نہیں بنے گا، تو پھر چنگا دل بنانے کے لیے آپ کو کوئی کام ہمت کرنی پڑے گی نا. چنگا دل بنانے کے لیے کسی چنگے دل والے کے پاس پہنچنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو ڈھونڈنا ہوگا کہ وہ ایسا کون سا آدمی ہے جو میرے دل کو چنگا بنا دے، جو اس کی برائیاں دور کر دے. یہ زبانی جمع خرچ سے نہیں ہو سکتا، نہ میرے کہنے سے ہو سکتا ہے، نہ کسی استاد کے کہنے سے ہو سکتا ہے. یہ بنتا ہے کہ جس کا سینہ منور ہے اس کے پاس جانا پڑے گا. جب تک اس کے پاس جائے گا نہیں، اس کو ثواب تو ملتا رہے گا جو یہ کر رہا ہے، لیکن سینہ کبھی صاف نہیں ہوگا. یہ صاف کیسے ہوگا؟ یہ دو چیزوں سے ہوتے ہیں. شیخ اوپر سے الکا کرتے ہیں اور پھر آپ نے سینے کا عکس ڈالتے ہیں، یہ ان دو چیزوں کا مرکب ہے، الکائی اور انعکاسی چیز ہے. جب تک یہ اس ہستی کے پاس پہنچے گا نہیں جس ہستی کا سینہ جو ہے منور ہے، اور وہ ہستی اس کے اوپر الکا بھی کرے گی اور اپنے سینے کا عکس بھی ڈالے گی اور پھر طریقہ بتائے گی، پھر یہ اس کی توجہ میں آئیں گے. یہی ہے توجہ. آپ نے توجہ کا تو سنا ہوگا کہ شیخ نے مجھے توجہ دی. یہ دو چیزوں کا مرکب ہے یہ توجہ. اس توجہ کو لینے کے لیے اس ہستی کے پاس آپ کو جانا ہوگا، اور وہ پھر آپ کو ڈھونڈنی بھی ہوگی. آپ ڈھونڈیں، کسی کے کہنے میں مت آئیں. آپ دیکھیے کیسا کوئی ہے، یہ نہ ہو کہ کسی فریب کار کے پاس چلے جائیں جس کا اپنا سینہ منور نہ ہو. یہ نہ تو تعویز داغ اس حصے کا کام ہے، نہ یہ ہے کہ جو یہ سیکھنے کے لیے آئے تو اس کے بیماریاں دور ہو جائیں، نہ اس کے سیکھنے سے یہ ہو کہ اس کے ترقی ہوتی رہے دنیاوی، اس کے کاروبار میں ترقی ہو جائے، وہ ایک الگ شعبہ ہے. جب انسان، آپ نے قبر تو دیکھی ہوگی سب نے کسی نہ کسی طریقے سے، اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جنہوں نے کسی میت کو غسل بھی دیا ہوگا، وہ آدمی جس کو آپ سلام کریں نا تو وہ اپنے مونچھوں کو تاؤ دے کے دوسری طرف منہ کر کے وعلیکم السلام پورا نہیں کہتا. وہ جب دھڑام سے گرتا ہے نا، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تھا کیا، لیکن پھر بول نہیں سکتا، وقت گزر گیا ہوتا ہے. اب وقت جو ہے نا، وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. 1500 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سور سے دوسرے سور پہنچنے تک، 1500 سال پہلے. اور اس خوف کی وجہ سے تنکا بن گئے لوگ کہ ابھی آیا کہ ابھی آیا، اور ہمارے تو سر پہ موت کھڑی ہے. ہم روز دیکھتے ہیں، دفن کرتے ہیں لوگوں کو. جب آپ قبر میں جائیں گے تو یہ نہیں کہ آپ اب روح نکل گئی ہے، روح جاتی نہیں ہے، اس کو لوٹایا جاتا ہے. وہ آتی ہے، پھر سوال و جواب والے آتے ہیں. اس نے اگر یہ سمجھے کہ میں یہ سوال یاد کر کے چلا جاؤں گا، یہ نہیں جا. یہ سوال سم ٹوٹل ہے پوری زندگی کا، مجموعہ ہے پوری زندگی کا. یہ جواب یاد کرنے سے نہیں آئیں گے، یہ عمل کرنے سے آئیں گے. اور عمل جو ہے وہ وزنی کیسا ہوگا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، وہ خلوص کے ساتھ. اور خلوص کیسے آئے گا؟ جب دل صاف ہو جائے. ہم جو یہاں جمع ہوتے ہیں، कोई हमारा रजिस्टर नहीं है कि किसी आने वाले का नाम लिखें कि इसका नाम क्या है, इसके बाप का नाम क्या है, ये किस ओहदे का है, किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है। जो यहाँ आता है उसको हज़रत जी यही समझते हैं कि ये तलबगार है, उसको बताते हैं, फिर उसके मुकद्दर हैं, उसको समझ आए या ना आए। और ये याद रखें कि ये हर एक के सीने में रह भी नहीं सकता। बड़े हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये नाम किसी कमीने के सीने में नहीं ठहरेगा। कमीने से मुराद मोची नाई नहीं है, कमीने से मुराद उसकी श्रेष्ठ है। अगर फितरत का कमीना है ना, ये चीज़ नहीं सार सके। दुआ करें कि अल्लाह हमारी कमीनगी निकाल दे और हम ये नाम, और नाम कितनी अजमत वाला है। ज़रा सिर्फ आप 30 सेकंड भी अगर गौर करें कि यार मैं नाम किस ज़ात का ले रहा हूँ, मेरी शक्ल क्या है, मेरा हुलिया क्या है, मेरे करतूत क्या हैं, और उसने मुझे अपना नाम लेने की तौफीक दे दी। इसी पे अगर इसकी 24 घंटे गुजर जाए ना, तो फिर ये कामयाब हो गया। बड़ी ऊंची ज़ात है जिसका ये नाम लेना है, और खुश नसीब हैं जो इस नाम से अपने सीने को साफ़ करते हैं और फिर इसके ऊपर कार बंद रहते हैं। और फिर ये चीज़ आगे बताएं, लेकिन आएगी उसी को जिसके नसीब में अल्लाह ने लिखी। ये नसीबदार चीज़ लोगों का काम है, और ये वक्त मांगते हैं, लेकिन वो वक्त नहीं कि आप जंगल में चले जाएं। आप अपना काम करें, अगर जहाँ जहाँ भी करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं वो करते रहें, लेकिन मगरब के बाद और तहज्जुद के बाद। और अल्लाह की ज़ात का करोड़ा बार शुक्र है, जो साथी हमारे साथ चंद दिन लगता है ना, उसको अल्लाह ताला तहज्जुद नसीब कर देते हैं, उसको कहना नहीं पड़ता, उसका चेहरा भी बदल जाता है, वो ख़ुद भी देखता है कि अल्लाह ने मुझ पर क्या करम किया। और इसको करने का तरीका सीख ले। अभी हम यही चीज़ करेंगे अल्लाह के फजल से, और करने का तरीका ये है कि किबला रूह बैठे। जो शख्स करवाएगा वो तीसरा कलमा पढ़ेंगे, आप भी धीमी आवाज़ में उनके पीछे पीछे पढ़ें, फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और लफ्ज़ अल्लाह जो है कलब से उठाना है, अल्लाह हू, लेकिन ज़ुबान से नहीं। ज़ुबान बंद रहे, ज़ुबान की हरकत सामने और गले की हरकत ये नहीं शामिल होनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ सांस के साथ। इसको कहते हैं ज़िक्र पास अनफाज या ज़िक्र खफ़ी, यानी ये अपने हर सांस की निगरानी कर रहा है। इसको पता है या इसके अल्लाह को पता है। फिर जब ये करे बैठे तो इसका ध्यान तवज्जो इलल्लाह हो। इसकी कुव्वत और तेज़ी जो है वो इसलिए है कि इसका सीना गर्म हो और ये अनवारात जज़ब करने के काबिल हो जाए, और इसका ध्यान उधर इसलिए हो कि जो कुछ आ रहा है इसके सीने में जा रहा है। आता आप की ज़ाती अकदस से है, लेकिन इसका तरीका ये है कि अगर तो डायरेक्ट करना होता तो आदम अलैहिस्सलाम को भेजने की ज़रूरत ही नहीं, मशरूम की तरफ इंसान निकलते और फिर वो अपने जवान होते और ये काम करते। इसके लिए फिर एक तरीका रखा है, पैगंबर भेजे, उनको जमात दी, उन्होंने फिर आगे ये काम बढ़ाया। ये हमारे हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने ये काम सीखा अपने शेख से, उन्होंने अपने शेख से हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुँचती। हमारा तरीका जो है नक्शबंदी है, नक्शबंदी हमारी बुनियाद है, और जो तरीका ज़िक्र है वो अवैसी है। अवैसी से ये मुराद नहीं कि हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से कोई ताल्लुक़ है, बल्कि ये ताल्लुक़ है कि जैसे उन्हें अवैसियत से फैज़ अखज़ किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से, इसी तरह से ये चीज़ चलती है। ये सीना बसीना, ये ना तो ज़ुबान के मोहताज है। ये चीज़ जब सीने में आ जाए तो जो साथ बैठेगा वो भी रंगा जाएगा, और देर नहीं लगती। देर सिर्फ ये लगती है कि इसका इरादा बने, इसको खौफ आए, इसको इस आयत पर जो है ना यकीन आ जाए, या मौलवी साहब बैठे हैं आलमी दीन हैं, ये मुझे बताएंगे, आपको भी बताएंगे कि कितने मौलवी हैं जो जुमे की तकरीर में ये आयत पढ़ते हो। मैंने तो अपनी 73 साल की उम्र में किसी मौलवी साहब को ये आयत पढ़ते हुए नहीं देखा। वो ये नहीं कि पढ़ना नहीं चाहते, पढ़े तो कोई पूछ ले मजमे में से कि ये कल्बे सलीम बनेगा कैसे, तो उनके पास जवाब नहीं। हम अल्लाह के फजल से अपने शेख से सीखा और इस पर हमें अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये हमारा सीख के फिर करते हैं। इसका ताल्लुक है हमेशगी से। ये अपने कल्ब पे ध्यान रखें, और ये जो दिल है ना, आप देखते हैं जो आजकल तो ऑपरेशन भी बड़े होते हैं, हर आदमी को अब तजर्बा भी है, जिसको देखें वो दिल का मरीज़ है, लेकिन असल मरीज़ वो हैं जिन्होंने दिल को साफ नहीं किया। वो तो कोई बात नहीं, रगें साफ हो खून आना शुरू हो जाएगा, इसको साफ कराना। तो इसको जब करते रहेंगे आप, ध्यान इधर होगा, ये आगे चलाते जाएंगे साथियों को जो उनके सब असबाक हैं। फिर 25-30 मिनट 35 मिनट के बाद जब ये कहते हैं कि सांस रोक लें, तो सांस रोक लेने का मतलब ये है कि पहले तो मैंने सांस से जिक्र करता रहा, और इसके करने का ये है कि पट्ठू की थोड़ी सी हरकत, क्योंकि वैसे आदमी से सांस भी नहीं निकलता, और ऐसा ऐसा ये पक जाता है सांस। आज आप जब करेंगे कुछ दिक्कत होगी, लेकिन इसको पकाएं। हज़रत बहू ने क्या फरमाया है कि मुँह कुछ ना लावन हूँ दामनू कैद लगाऊँ, कल्बी रूई सिरी खफी अखफा कमावन हूँ, कल्बी रूई सिरी खफी अखफा लताइफ कमावन हूँ। ये कमाने की चीज़ है, कस्ब है, ये सुनने की नहीं है ना जानने की है, ये करने की है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए और हम सबको तौफीक। अभी जिक्र हज़रत खुर्शीद साहब करवाएंगे, ये हमारे अमीर जमात भी हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और हम सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए, और हमारे शेख को अल्लाह ताला सेहत कामिल आजला मुस्तमिला अता फरमाए। ए अल्लाह तू उनके ज़ौफ़ को कुव्वत में बदल, या अल्लाह तू देख रहा है, या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदके उनके ज़ौफ़ को कुव्वत में बदल दे, या अल्लाह उनकी बीमारी को शिफा में बदल दे, या अल्लाह उनकी बीमारी को सेहत कामला आजला मुस्तमिर अता। ए अल्लाह हमारे शेख को मेरे मौला कामिल सेहत के साथ मेरे मौला फिर इस मरकज में, वो अपने पाँव पर खड़े हो। या अल्लाह हम सब की ये दुआ है, ए अल्लाह हमारी ये आरजू है, ये हमारी तमन्ना है कि अल्लाह हमारे शेख को सेहत कामला आजला मुस्तमिर अता फरमा। ए अल्लाह मैंने एक दफ़ा दुआ की, या अल्लाह हमारी उम्र लग जाए। शेख साहब हज़रत शाह साहब फरमाते हैं आपकी गंदी उम्र कैसे उनको लगी, उनकी पाकीज़ा उम्र। आप मांगें कि अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, और जो काम वो कर रहे हैं अल्लाह इस काम में बरकत अता फरमा दें। हमारा इतना कहना कराना और हजरत को सिर्फ देखना जो है वही काफ़ी है। जो मुरीद हज़रत को मोहब्बत से देख लेता है, समझो उसे एक तवज्जो हासिल हो गई, और वो अगर आप मेरे साथ 10 साल बैठ रहे हैं तो वो तवज्जो मैं नहीं दे सकूँ। अल्लाह ताला हम सब को अपने शेख की आने की तमन्ना और आरजू में रखे, और हम दुआ करें कुछ पढ़ के, कुछ नफल पढ़ के, कुछ कुरान पढ़ के, कोई दुरूद शरीफ पढ़ कर अपने शेख के लिए बार बार दुआ करें, बार बार दुआ करें कि या अल्लाह हमारे शेख को सेहत कामला आजला मुस्तमिर अता। मैं मजीद क्या कहूँ, अल्लाह ताला हमारी गाँव को सुने, आखिर दावा ना जी।